તારીખ 26/4/1988 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 50
જ્ઞાન કા લક્ષણ સ્વપર પ્રકાશ તથા સોખિસ પ્રકાશ જ્ઞાની અજ્ઞાની કે કૈસે પાયા જાતા ખુલાસા સે સમજાય જ્ઞાન કા લક્ષણ મેને શરૂ ज्ञान का स्वरूप स्व को प्रकाशना और पर को प्रकाशना ऐसा इसका स्वरूप है। वो इस तरह है कि ज्ञान स्वयं को तो प्रसिद्ध करता ही है, जो ज्ञान पैदा होता है तो स्वयं को तो प्रसिद्ध करता ही है और साथ ही ज्ञान में दूसरे के पदार्थ का प्रतिबिंब झलकता है, स्वयं को प्रकाशित करता हुआ दूसरे पदार्थ उसमें साथ ही झलकते हैं। ये सामान्य तौर से स्वपर प्रकाशन है। ज्ञानी को स्वयं का वेदन प्रसिद्ध है, ये स्वय प्रकाशकपणा है और दूसरे पदार्थ पर रूप से प्रतिभाषित होने लगते हैं, पर रूप से जाने जाने जाते हैं, ये इनका स्वपर प्रकाशन पड़ा है। अज्ञानी को सिर्फ ज्ञान की प्रसिद्धि है, ज्ञान परिणमता है तो ज्ञान की प्रसिद्धि है उसको, लेकिन उसको ज्ञान का जो स्वयं को वेदने का स्वभाव है उस प्रकार का परिणम नहीं है। ज्ञान की प्रसिद्धि है, ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता रहता है, फिर भी जहाँ तक वेदन का सवाल है, स्वयं का वेदन उसको तिरोभूत है तो सही लेकिन तिरोभूत है और पर पदार्थ को एकांत रूप से वो जानता है, ऐसा उसको जानता है, मैंने अवलंबित होके जानता है, इससे अनुभव करके जानता है, ऐसा उनको आभास होता है, लेकिन वहाँ भी उनको सिर्फ ज्ञान में पर पदार्थ का झलक ही आती है, आकृति ही आती है, प्रतिबिंब ही आता है। तो उस प्रकार स्व पर का प्रकाशन तो ज्ञान में सामान्य रूप से ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को है, फिर भी दोनों के अनुभव में बहुत अंतर है, इस प्रकार से अंतर है। कषाय की तथा ज्ञान की उत्पत्ति एक ही क्षेत्र और एक ही समय में होती है, फिर इन दोनों से भिन्नता किस प्रकार है? एक ही क्षेत्र में होती है फिर भी दोनों का स्वाद अलग अलग है, दोनों एक रूप नहीं है। कषाय भाव कुछ जानता नहीं और ज्ञान जानता है स्वय को भी और पर को भी, कषाय को भी, तो दोनों में भिन्नता तो है ही, स्वभाव से ही भिन्नता है, स्वरूप से ही भिन्नता है और एक में अपनत्व होते ही दूसरे में अपनत्व नहीं हो सकता। जैसे कि अज्ञान दशा में कषाय में एक है तो ज्ञान होते समते भी जीव इसको छुप जाता है, ज्ञान दशा में ज्ञान में एकत्व होने से राग अपने दशा में होते हुए भी राग को ऊपर रूप से जानता है, स्वयं रूप से नहीं जानता है। दोनों स्वभाव से परस्पर विरुद्ध होने से एक में ही एकत्व हो सकता है, एक साथ दोनों में एकत्व नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों भिन्न हैं, इतने भिन्न हैं कि परस्पर विरुद्ध है। तो भले ही एक क्षेत्र में उत्पन्न है, फिर भी दोनों में इस प्रकार से स्वभाव से ही भिन्नता है, स्वरूप से ही भिन्नता है, और अपनत्व एक में ही हो सकता है, चाहे इसमें राग में हो चाहे ज्ञान में हो। अनुभव किस गुण की पर्याय है? आत्मानंद में ब्रह्मानंद का कारण सम्यक ज्ञान है या सम्यक दर्शन या वितरागता है, कौन है ऐसा प्रश्न है। अनुभव को मुख्यतया तो ज्ञान ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण की पर्याय यही है, फिर भी उसको दर्शन प्रधानता से भी कहने में समझाने में आती है और चारित्र प्रधानता से भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि अनुभव के काल में दर्शन भी परिणत है, ज्ञान भी परिणत है और चारित्र भी परिणत है। शास्त्र में तीनों अपेक्षा से तीनों प्रकार की विवक्षाएं आती हैं, लेकिन अनुभव करने का सामर्थ्य ज्ञान में है, इसलिए मुख्यतया एक ज्ञान गुण की पर्याय बताई जाती है। वह तो अनुभव करने का सामर्थ्य ज्ञान है, क्योंकि अनुभव में स्थिरता होने से, स्वरूप स्थिरता होने से कभी उसको आचरण कहने में आता है, और अविनाभावी रूप से वहाँ श्रद्धान आत्मश्रद्धान होता ही है, इसलिए वहाँ कभी श्रद्धान की मुख्यता से भी इसके शास्त्र वचन कभी आ सकता है। तो जहाँ विवक्षा जो भी है, वचन विवक्षा का कहने वाले का दर्शाने का क्या अभिप्राय है वो समझ लेना चाहिए। और आत्मानंद होने का कारण तो उस वक्त आनंद गुण भी परिणमता है और कषाय की उत्पत्ति होती ही नहीं, और कषाय में जो दुख उत्पन्न है वो दुख का वहाँ उत्पाद ही नहीं है, तो अनुभव कहाँ से होगा, दुख की उपस्थिति ही नहीं है, उसका अनुभव नहीं होता है। और आनंद गुण है वो स्वभाव रूप परिणम्य लगता है, तो उसका अनुभव आता है, इसलिए आनंद का कारण खुद आनंद गुण का परिणमन ही है। फिर भी सहयोगी कारणों से वितरागता को भी आनंद का कारण इसलिए कहने में आता है कि राग में दुख है और वितरागता होते हुए दुख का अभाव हो जाता है, इसलिए कभी ऐसी भी विवक्षा वचन में होती है। तो हाँ, वो उपचार से कहा है, एक गुण का दूसरे गुण पर उपचार किया जाता है ऐसा समझना चाहिए। जी
अभाव दर्शन
आत्मा में सुख शक्ति है, अनंत सुख होता है, आत्मा में सुख शक्ति है, उसका परिणाम होता है, उसका अनुभव होता है। अनंत गुण में ये सब गुण है, तो गुण का परिणाम कि गुण की स्वयं की सामर्थ्य है, गुण है वो स्वयं शक्ति रूप है, स्वयं सामर्थ्य रूप है, और अपना कार्य करने में वो समर्थ हैं, फिर भी कभी दूसरे गुण पर उपचार से कथन आता है कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, ऐसा कथन आता है, वो उच्चरित कथन। लेकिन सभी गुण अपने सामर्थ्य से ही परिणमन करते रहते हैं। शास्त्रों में राग को कभी आत्मा का कहते हैं और कभी राग को उद्गल का कहते हैं। हम राग को किसका माने? शास्त्र में राग को आत्मा का कहा है, वहाँ आत्मा का अशुद्ध परिणाम बताने का अभिप्राय है। राग आत्मा स्वयं परिणमित होता है, ऐसा राग का जो अशुद्ध रूप परिणमन है आत्मा में, वो दूसरे पदार्थ का नहीं है, ऐसे दर्शाने का वहाँ प्रयोजन है। और राग से भिन्न होकर स्वयं के स्वभाव में अपनत्व करने का जहाँ अभिप्राय है, वहाँ राग को पर कहा है, पुद्गल कहा है, जो अपनी जाति का नहीं है, स्वभाव भूत नहीं है, ऐसा बतला कर इससे भिन्न होकर इसका अभाव करने की विधि जो है, उस विधि में राग को पुद्गल का कहने में आता है। फिर भी ज्ञान में उसी काल में पता है कि परिणमन ये आत्मा का है, दूसरे पदार्थ का, पुद्गल पदार्थ का नहीं है। लेकिन पुद्गल का जैसी प्रकृति है, वैसी प्रकृति अशुद्ध परिणमन में राग की, द्वेष की, मोह की होती है। वो सदृशता देख करके और उसका अवलंबन देख करके और उसका निषेध करने के अभिप्राय से उसको पुद्गल का कहने में आता है। आत्मा का स्वभाव राग करने का है नहीं और परग्रह राग कराते नहीं, तो फिर राग क्यों होता रहता है? अभी प्रश्न हुआ था अजीत भाई के वांचन के काल में, आत्मा का स्वभाव राग करने का है नहीं, तो राग करने का आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा स्वभाव जब जाना और संभाला, तब तो राग होगा नहीं। साधक दशा का जो रागांश होगा वो अपने रूप अनुभव में आएगा नहीं, पर रूप में अनुभव में आएगा। तो प्रश्न में ये बात है कि जब आत्मा का स्वभाव राग करने का है नहीं, तो राग क्यों होता है? कि जिसने ऐसा स्वीकार किया स्वभाव का कि राग करने का स्वभाव नहीं, उसको तो राग नहीं होता। राग किसको होता है? कि जो राग करने का आत्मा का स्वभाव नहीं है, इस प्रकार से स्वीकार नहीं करते, उसको राग होता है। यानी कि राग करने का मेरा स्वभाव है, मैं संसारी हूँ, इसलिए राग करने का मेरा स्वभाव है, ऐसा श्रद्धा ज्ञान, ऐसा स्वीकार होता है श्रद्धा ज्ञान में, उसको राग होता रहता है। लेकिन जिसको स्वभाव का पता चला कि राग करने का स्वभाव ही नहीं, उसको तो राग होता ही नहीं, ऐसा कहने में आता है। तो कोई कहेंगे कि साधक दशा में भी ऐसे जिनको राग तो पाया जाता है, देखा जाता है, कि वो देखने में आता है, लेकिन वो स्वयं अपने रूप उसको नहीं जानता, अनुभव नहीं करता, मानता नहीं, इसलिए उसको नहीं, ऐसा कहने में आता है। और इसका मतलब ये भी है कि इसके राग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। साधक के रागांश की चिंता न तो साधक को है, फिर दूसरे को करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए आत्मा का स्वभाव राग करने का है ही नहीं, फिर राग क्यों होता है, ये प्रश्न स्थान है। जिसको ऐसा लगता है कि मुझे क्यों राग होता है, तो जब मुझे राग होता है ऐसा जो अनुभव करता है राग के साथ एकत्र होकर के, उसको राग करने का स्वभाव नहीं है, ऐसे आत्मा को इस वक्त संभाल किया ही नहीं, वो चुप गया है इस वक्त स्वभाव को। स्वभाव को जब चूका है तब राग हुआ है एकत्व का, और जिसने स्वभाव को चूका नहीं, स्वभाव में एकत्व किया, उसको तो राग हुआ ही नहीं, समझो दो बात साथ में नहीं रहती। पर द्रव्य तो राग को कराते ही नहीं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि द्रव्य दूसरा द्रव्य का काम करे, वो तो सवाल ही नहीं होता। पहले ज्ञान जानने में आता है या आत्मा, ज्ञान और आत्मा एक ही है, फिर उसको दो करके पहले कौन और पीछे कौन, ये प्रश्न ज्ञान और आत्मा को भिन्न भिन्न पदार्थ समझने का प्रश्न है, लेकिन ऐसा पदार्थ है ही नहीं। ज्ञान और आत्मा एक ही चीज है, दो चीज है ही नहीं, फिर पहले पीछे जानने का सवाल नहीं रहता। ज्ञान जानते ही, ज्ञान को ज्ञान जानते ही आत्मा का जानना होता है। गुरुदेव के शब्द में कहें तो स्वरूप से जाना हुआ ज्ञान ही आत्मा है, क्या स्वरूप से जाना हुआ ज्ञान ही आत्मा है। आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है। भगवान अमृतचंद्र आचार्य देव 13वें कलश में ये कहते हैं कि जो आत्मानुभूति है वही ज्ञानानुभूति है, और ज्ञानानुभूति है सुई आत्मानुभूति है, ऐसा वास्तव में जानकर ज्ञान में ज्ञान का रहना यही आत्मा का अनुभव है, ऐसा आत्मा बतलाया है 15 गाथा के पहले वाला एक कलश है 13 नंबर का। दूसरा प्रश्न है यहाँ, यदि द्रव्य की प्रसिद्धि पर्याय से होती है तो पर्याय द्रव्य से ऊंची हो गई, ऐसा द्रव्य है, द्रव्य में द्रव्य स्वभाव ये सामान्य है और पर्याय उत्पाद रूप विशेष है, वो अपना अपना स्थान में अपने अपने स्वरूप रूप है। जो मोटी बात होती है वो पहले जानने में आती है और सूक्ष्म है वो पीछे जानने में आती है। स्वभाव है वो सूक्ष्म है और पर्याय है वो स्थूल है, स्वभाव की अपेक्षा पर्याय स्थूल है, तो स्थूल जानने में आ सकती है, तो पर्याय से द्रव्य की प्रसिद्धि करने में कराने में आती है। ये प्रसिद्धि कराने का एक तरीका है, पहले पर्याय से द्रव्य से जाना, यानी ये प्रसिद्ध चीजें हैं, ये अप्रसिद्ध चीजें हैं। जैसे दर्पण में, दर्पण की जो ऊपर की सपाटी है इसके पीछे इसका दल है, कांच का दल है, तो ये आगे है और प्रसिद्ध है, तो पहले जानने में आता है इससे ये दर्पण दल वाला दर्पण है, ऐसा समझने में आता है। तो ये तो प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, इसमें ऊंचे नीचे का सवाल नहीं। इसलिए ऊंची नहीं है कि पर्याय एक समय की है और द्रव्य त्रिकालिक है, तो कहाँ एक समय की आयु वाली पर्याय, कहाँ एक समय का तत्व सत्व, और कहाँ त्रिकालिक सत्व। त्रिकाल के आगे इसकी ऊंचाई कैसे हो गई, ये सवाल पैदा नहीं। पंडित टोडरमल जी ने फरमाया है कि स्वभाव और पर्याय का बराबर ध्यान रखना, तो स्वभाव तो त्रिकाल शुद्ध है, पर्याय मलिन है, और समय सार में लिखा है कि पर्याय से शुद्ध जानने पर शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। स्वभाव और पर्याय का बराबर ध्यान रखना, तो स्वभाव तो त्रिकाल शुद्ध है और पर्याय मलिन है। फिर वही प्रश्न हुआ कि जिसको अपना स्वभाव शुद्ध है ऐसा जाना, उसने अपनी पर्याय में मलिनता नहीं जानी, क्योंकि स्वभाव को शुद्ध जानने वाली पर्याय स्वयं शुद्ध ही है, शुद्ध पर्याय ही शुद्ध स्वभाव को जानती है, मलिन पर्याय शुद्ध स्वभाव को नहीं जानती। इसलिए ये प्रश्न स्थान में है कि स्वभाव शुद्ध है फिर पर्याय मलिन क्यों? जिसको स्वभाव शुद्ध है उसकी पर्याय मलिन नहीं है, और जिसकी पर्याय मलिन है ऐसा उसको लगता है, उसने शुद्ध स्वभाव को जाना ही नहीं, माना ही नहीं, स्वीकार किया ही नहीं, दो बात एक साथ नहीं होती। समय साथ में लिखा है कि पर्याय से शुद्ध जानने पर शुद्धात्मा की प्राप्ति, पर्याय से मैंने जानने का कार्य तो पर्याय से ही होता है, लेकिन शुद्ध जानने पर शुद्ध ही जानने में आता है, आत्मा को शुद्ध जानने से शुद्धि की उपलब्धि होती है, अशुद्ध मानने पर अशुद्धता की उपलब्धि होती है। तो जिसको मलिनता की उपलब्धि है उसने स्वभाव को मलिन जाना है, उसने शुद्ध जाना ही नहीं, अपने आप को मलिन ही स्वीकार किया है, इसलिए उसको मलिनता का अनुभव है, मलिनता की उत्पत्ति है, और मलिनता ही इनका आत्मा इस वक्त हो गया है, ये इसका आत्मा है। पर्याय में गर्म पना है, हाँ नहीं, पर्याय जैसी है वैसी जाननी चाहिए, लेकिन मेरा स्वरूप ऐसा है ऐसा नहीं जानना चाहिए। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, पर्याय उष्ण है, तो स्वभाव उष्ण है ऐसा नहीं जानना चाहिए इस वक्त। ये गर्म पानी से अग्नि को शांत कर सकते हैं, कब? कि उसका शीतल स्वभाव ज्ञान में है तब अग्नि को शांत कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इसके स्वभाव का जब सही ज्ञान होता है तो अवस्था का यथायोग्य ज्ञान होता ही रहता है, नहीं होता है वो बात नहीं है, लेकिन ज्ञान होना एक बात है और अपने स्वरूप रूप स्वीकार करना ये दूसरी बात है। जब ज्ञानी को अपने अवस्था में उत्पन्न रागांश का ज्ञान होता है, तो इस रागांश का ज्ञान किस तरह होता है कि मैं तो शुद्ध हूँ और ये राग जो है ये पूर्व कर्म के साथ जुड़ने वाला एक अंश है, मैं उसका कर्ता नहीं, कार्यता नहीं, मैं इसका अनुमोदक नहीं, ऐसे ऐसा रख करके उसको जानते हैं इस अंश को, तो उसके साथ एकत्व नहीं होता और उसका यथायोग्य ज्ञान रहता है। लेकिन रागांश को ही अपना स्वरूप मान ले, ये बात तो बिल्कुल अनुचित है। पानी की उष्णता को पानी का स्वभाव मान लेना नहीं चाहिए, भले ही अवस्था उष्ण हो, लेकिन उसी वक्त स्वभाव तो शीतल ही शीतल है, ये बात तो पानी में से कभी गई नहीं, चली नहीं गई, पानी उष्ण होने से उसकी शीतल स्वभावता चली नहीं गई, इसका नाश नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही स्वभाव रहा है, और तब ही उसको स्वयं ठंडा होने का बनता है, उसको ठंडा करना नहीं पड़ता है, वो स्वयं ही ठंडा हो हो ही जाता है, इनका स्वभाव है इसके कारण से। ज्ञान के द्वारा आत्मा की पहचान कराए, और ज्ञान है सो आत्मा है, ऐसा होने पर गुण गुणी का भेद क्यों किया जाए? तो सही बात है, गुण गुणी का भेद समझाने के लिए कराने में आता है, अनुभव कराने के लिए गुण गुणी का भेद की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब गुण गुणी का भेद से समझाया जाता है, तब भी उसी वक्त ये सूचना दी जाती है कि ये भेद समझाने के लिए है, अनुभव कराने के लिए। अनुभव कराने के लिए तो दोनों के भेद मिटाने की बात है, अभेद का अनुभव करवाना है, उसमें भेद को चालू नहीं रखना है। ये तो अभेद से नहीं समझता है, इसलिए भेद बतलाकर समझाया जाता है। जैसे समय सारणी ने दृष्टांत दिया है कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में कहे बिना वो समझेगा नहीं, ऐसे भेदवासित बुद्धि में खड़ा हुआ अज्ञानी अभेद को सीधा ही नहीं समझ सकता, इसलिए उसको गुण होने का भेद बतलाकर समझाया है। तो लिया था तच्च अन्वेषण काल, तत्व का अन्वेषण काल में, समझ काल में ऐसा भेद डाला जाता है, कहा जाता है, लेकिन नो आराधना समय, आराधना समय में ऐसा भेद कभी नहीं होता। सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले अर्थात सम्यक दर्शन के सम्मुख वाले जीव का पुरुषार्थ किस कोटि में आता है, सम्यक में या मिथ्यात में? पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ है, सम्यक सम्मुख का पुरुषार्थ ये सही पुरुषार्थ है, जिस पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ये सही पुरुषार्थ है, ये सच्चा पुरुषार्थ है, वो आत्म प्रत्ययी पुरुषार्थ है। मात्रा कम होने से सम्यक दर्शन वहाँ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो सही पुरुषार्थ में आता है, उसको सच्चा पुरुषार्थ कह सकते हैं। भले ही सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, इसलिए मिथ्यात्व अवस्था है, फिर भी पुरुषार्थ उनका सही है, सच्चा है, ऐसा समझना चाहिए। मार्ग का मार्ग है, उसको पगडंडी कहते हैं, क्या कहते हैं, मोक्ष मार्ग है, ये राष्ट्रीय है, मोक्ष मार्ग तो प्रधान राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, राजमार्ग जिसको कहते हैं, और ये जो पुरुषार्थ है ये अप्रोच टू दी नेशनल हाईवे, ये अप्रोच है इसका, तो अप्रोच में पहुँचता है, इसलिए वो सही है। मार्ग नहीं है, लेकिन मार्ग में पहुंचने तक का सही उपाय तो है। जो बात जहाँ ठीक है वहाँ ठीक ही समझनी चाहिए अपने स्थान में। सत्पुरुष के सर्वार्पण बुद्धि में निमित्ताधीन दृष्टि होती है, और मुझे गुरुदेव श्री ने तो उसका निषेध किया है। सत्पुरुष के सर्वार्पण बुद्धि में निमित्ताधीन दृष्टि होती ही नहीं, ये गलत फहमी है कि सत्पुरुष के प्रति सर्वार्पण बुद्धि आने से निमित्ताधीन दृष्टि हो जाती है। इसको सर्वार्पण बुद्धि से सत्पुरुष के प्रति भक्ति आती है, वो दूसरे के अलावा बहुत अच्छी तरह जानता है कि मेरा कार्य मेरे पुरुषार्थ से ही होगा, सत्पुरुष को न तो मेरी अर्पणता की आवश्यकता है न वो चाहते हैं, लेकिन मेरी ऐसी स्थिति हुए बिना इसका बोध कि असर मुझे पहुँचेगी नहीं, मेरे उपादान में इस प्रकार होना, उसमें उपादान का बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, दूसरे दृष्टिकोण से बताएं तो उसमें उपादान का बहुत सूक्ष्म ज्ञान है कि उपादान में कैसी स्थिति होने पर ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। निमित्त से काम होता है ये तो सवाल ही नहीं, लेकिन किस उपादान की कैसी स्थिति में किस निमित्त का निमित्त नैमित्तिक योग बैठता है, ये उपादान के सूक्ष्म ज्ञान वाले का विषय का बोध सुनता है तो सुनने वाले को इस परिस्थिति पैदा हुए बिना इस बोध का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बैठता। निमित्त नैमित्तिक संबंध मैंने क्या कि जिस पर पदार्थ की उपस्थिति में बिना पर पदार्थ का अवलंबन और हस्तक्षेप बिना सही कार्य हो जाए उसको नैमित्तिक कार्य कहते हैं। ऐसा भौतिक विज्ञान में भी है, साइंस के जो विद्यार्थी होंगे उसको मालूम होगा कि साइंस में विज्ञान में भौतिक विज्ञान में एक कैटलिक एजेंट होता है, एक पदार्थ, जो पदार्थ है वो तो पदार्थ अपने स्थान में रहता है, कुछ लेता नहीं कुछ देता नहीं, लेकिन इसकी उपस्थिति में कार्य बन जाता है। ऐसा पर पदार्थ है निमित्त नैमित्तिक संबंध में कुछ लेता देता नहीं, लेकिन इसकी उपस्थिति में कार्य बनता है तो उस पर निमित्त का आरोप करने में आता है। ये निमित्ताधीन दूसरा प्रश्न है, थोड़ा गड़बड़ी में से उत्पन्न हुआ है, परिणाम समर्पण के परिणाम नहीं है, कि दूसरे के समर्पण के परिणाम को निषेध करना चाहते हैं। खुद तो स्वच्छंद में आई गए और दूसरे को स्वच्छंद में ले जाने के लिए निमित्ताधीन दृष्टि का आरोप करना है कि तुम ही हमारी जाति में आ जाओ तो हमको अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जो समझदार है वो तो अच्छी तरह समझेगा कि हमारा काम किस प्रकार होगा। यही जीव, ऐसा प्रश्न करने वाला जीव कहीं बाहर अपनी जरूरत के लिए संसारी तो है, किसी पर पदार्थ के साथ व्यवहार का परिणाम उसको होता है अपनी आवश्यकता के अनुसार, वहाँ सब भूल जाता है उत्पादन को। इसकी हालत देखी है, वो उपादान को भूल जाता है, इतना निमित्ताधीन दृष्टि से परिणमता है कि बिल्कुल दीन होकर उसका व्यवहार चलता है, खाने में पीने में और कई जगह उनको जहाँ भी आवश्यकता लगे खुदगल से निंदा करता है, दूसरे लोगों से निंदा करता है, जहाँ भी उनको जरूरत लगे कि मेरा काम ऐसे होगा मेरी आवश्यकता की पूर्ति ऐसे होगी तो इतना दिन हो जाता है, वो निमित्ताधीन दृष्टि वाला प्रश्न ही उसको नहीं रहता है, और सत्पुरुष की बात आती है तो उसको ये लग जाता है कि इसमें कहीं निमित्ताधीन दृष्टि तो नहीं हो जाएगी, लेकिन वो देखता नहीं है कि मेरा उदय कैसा सा परिणाम हो रहा है। अपना लक्ष्य होना चाहिए कि अपने परिणाम कैसे चलते हैं। इसलिए तो ये 827 नंबर का बोल दिखाया परमागम सार का, कि सच्चे निमित्त का विवेक करना ये दरअसल में आत्मा का विवेक है। निमित्त का विवेक, सच्चे निमित्त का विवेक, ये असल में तो आत्मा का विवेक है। निमित्त का विवेक नहीं है, वो आत्मा का विवेक है। जैसे पुरुष के प्रति समर्पण हुआ तो उसमें सत्पुरुष के प्रति का समर्पण समझ नहीं है, वास्तव में वो अपनी आत्मा का विवेक है कि मेरी आत्मा में इस तरह से फायदा होगा, ऐसा उन्होंने जाना है कि मुझे फायदा कैसे होता है। तो अपने फायदा के साथ वो चलता है, अपना लाभ के दृष्टिकोण से अपने आप से परिणमता है। दूसरा तो कोई दूसरे से स्पर्श ही नहीं है। बुद्धिपूर्वक राग व अबुद्धिपूर्वक राग का खुलासा समझाइए। क्या बंद दोनों में एक सा होता है? सोतो दशा में क्या अबुद्धिपूर्वक राग होता है?
सोते हुए हाँ? सोते हुए सोने के वक्त में
क्या बंद दोनों में एक सा सोतो दशा में क्या होता है?
बुद्धिपूर्वक राग व अबुद्धिपूर्वक राग का खुलासा से समझाइए। क्या बंद दोनों में एक सा होता है? सोती दशा यानी स्लीपिंग स्टेज, सोती भी
सोती में
सोने सोना
सोने में
हाँ सोते वक्त में भी क्या अबुद्धिपूर्वक का राग होता है?
बुद्धिपूर्वक राग में बुद्धि से समझ में आवे, मन में जो ग्रहण किया जाए, ऐसे राग को बुद्धिपूर्वक का राग कहा जाता है, जो बुद्धिगम्य होता है। और जो राग बुद्धिगम्य नहीं होता, ऐसा सूक्ष्म है, उसको अबुद्धिपूर्वक का राग कहा जाता है। मन से ग्रहण किए जाने वाले राग को बुद्धिपूर्वक का राग कहते हैं, और जो मन में नहीं समझ में आ रहे फिर भी राग है, वो अबुद्धिपूर्वक का राग है। दोनों में बंद होता है, एक सा होता है, ऐसा सवाल ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी रस की तीव्रता होती है उसका बंद ज़्यादा पड़ता है। रस की तीव्रता में बुद्धिपूर्वक के राग में अगर तीव्र रस हुआ तो वहाँ बंद तीव्र होगा, और अबुद्धिपूर्वक के राग में तीव्रता रस की होगी तो उसका बंद तीव्र होगा। मैंने बंद का संबंध तो रस की तीव्रता के साथ संबंध रखता है। सोते वक्त भी अबुद्धिपूर्वक का राग चालू रहता है। सोते वक्त क्या शुद्धोपयोग और स्वानुभव के काल में भी अबुद्धिपूर्वक का राग जो है वो चालू रहता है, चला नहीं गया। बुद्धिपूर्वक का राग वहाँ चला गया है, शुद्धोपयोग के काल में बुद्धिपूर्वक का राग पैदा नहीं होता, लेकिन अबुद्धिपूर्वक का राग तो वहाँ ही चालू रहता है।
जैसे पांच जीव, पांच प्रकार के जीव बताए ना, तो हम कौन से कैटेगरी में आते हैं?
हम नीचे
वाला
दुंदा चुंदा संधा मुंदा धुंधा बनास शास्त्री के पद हैं, उसमें ये पांच बोल हैं। दुंदा चुंदा संधा मुंदा धुंधा, पांच तरह के जीवों में से हमारा नंबर कौन से जीव में रहा? अपने आप को समझ लेना, किसी से पूछने से क्या मतलब है। अपना जैसा परिणाम है उसकी तलाश करके अपना नंबर है जो भी परिणाम जैसा हो उसमें फिक्स कर देना। दूसरों से सर्टिफिकेट लेने की ये चीज़ नहीं है। सही भावना से जीव को अपना सुधार करना है तो इस भावना में आते ही पात्रता में आता है और पात्रता में आने से उसका सुधार होने लगता है तो उसमें तो सुंदा हो ही जाता है, फिर उंधा नहीं रहता। इसके लाइन सुंदे की हो गई, ऊंधे की छूट गई। जब यही भावना है, यही अभिलाषा है कि जैसे कैसे भी हमारे में दोष नहीं हो, हम निर्दोष होना चाहते हैं, हम पवित्रता के चाहक हैं, हमें अपवित्रता अपवित्र भाव नहीं चाहिए, तो ये ऊंधे नहीं रहेंगे, ये सूंधे हो जाएंगे और आगे बढ़कर अपना ही चलाएंगे। मैंने एक प्रश्न चला था कि अनंत काल में हम अनंत बेर तीर्थंकर के समव शरण में गए और अनंत बेर हमको सत्पुरुष भी मिले, लेकिन हम क्यों नहीं सुधरे? तो इसका यही कारण है कि सही भावना नहीं हुई, इसलिए नहीं सुधरे। अगर सच्ची अंतर में से शुद्धता की भावना, निर्दोषता की भावना, पवित्रता की भावना होए और ऐसे पवित्र सत्पुरुष भी मिले, दोनों का योग एक साथ बैठे और काम नहीं होवे, ऐसा कभी होता ही नहीं, न हुआ है न होगा, न अभी ऐसा कभी चालू वर्तमान में भी बन सकता है कि ये काम नहीं बने, बने ही बने, ये गारंटेड बात है। तो ये भावना सही होने से सब बात सही है, भावना नहीं होने से एक भी बात सही नहीं होगी। सत्पुरुष तो आत्मा अमृत सरोवर है, उनको बतलाते हैं और उसमें से अमृत पिलाते हैं। फिर इसके लिए क्या क्या कहना, कौन सी उपमा दी जाए, इस बात इसके लिए कोई उपमा ही नहीं। समझते हुए भी समझ में नहीं आती, नहीं जमती, टिकती है, इसका क्या कारण है? बस यही कारण है कि उसमें इस भावना का साथ नहीं है। समझता है ज्ञान के सूक्ष्म होने से, समझ में बात आती है, लेकिन भावना अगर साथ नहीं देती तो ये समझ बेकार हो जाती है, सिर्फ धारणा रूप रह जाती है, शुष्क हो जाती है, इसका कोई फल नहीं आता। आत्मभावना ऐसी तीव्र होनी चाहिए, स्वरूप प्राप्ति की भावना ऐसी तीव्र होनी चाहिए कि थोड़ी भी समझ कामयाब हो, थोड़ी भी हो तो लंबी छोड़ी हो गए और निष्फल हुए, इसका यही कारण है। टिकेगा ही, दूसरी परिणति जमी हुई है, ये परिणति बदलनी चाहिए, वो तीव्र भावना से ही बदलेगी, इसका एक ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। कारण तो ये है कि परिणति उल्टी जमी हुई है, समस्त उपयोग से कर लेते हैं लेकिन परिणति यूं की यूं जमी हुई रहती है उल्टी, ये जमती नहीं, बात टिकती नहीं, बात जमती नहीं, इसका यही कारण। परिणति बदले, ऐसा ही आत्मामय जीवन हो जाना चाहिए, तो काम हो ही हुए, नहीं होने का सवाल नहीं होता। जब जड़ से टेप आदि से देशना लब्धि नहीं प्राप्त होगी, तो तीर्थंकर की भी भाषा वर्गना जड़ है, तो फिर सम्यक दर्शन भी बिना देशना लब्धि के प्राप्ति बिना कैसे होगी। लेकिन तीर्थंकर की भाषा वर्गना तीर्थंकर की उपस्थिति में है या बाद में की बात है, ये सवाल है। देशना लब्धि प्रत्यक्ष तीर्थंकर, प्रत्यक्ष निर्ग्रंथ गुरु भावलिंग संत मुनिराज और प्रत्यक्ष सतगुरु, तीन में से किसी भी एक निमित्त से होती है। तीनों में से कोई भी नहीं हो गए और किसी की भी वाणी परोक्ष रूप से टेप आदि से, शास्त्र आदि से कैसे भी मिले, तो इससे देशना लब्धि नहीं होती। देशना लब्धि में प्रत्यक्ष जीवंत आत्मा, जीवंत सत्पुरुष का योग होना जरूरी है, आवश्यक है।
ऐसा लगता है तीर्थंकर की वाणी की जड़ जो ध्वनि करती है, तो भाषा वर्गना की है,
वाणी तो तीर्थंकर की हो या निर्ग्रंथ गुरु की हो या चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति सत्पुरुष की हो, वाणी तो सबों की जड़ है, किसी की वाणी में चैतन्य नहीं है, तो ये तो प्रश्न ही नहीं कि किसकी वाणी जड़ है। वाणी तो जड़ ही होती है किसकी भी हो, लेकिन प्रत्यक्ष योग में और परोक्ष योग में बहुत बड़ा अंतर है। कहने का मतलब यह है जिनवाने पढ़े पढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन देशना लब्धि अगर प्राप्त करनी हो तो किसी सत्पुरुष के चरण में जाने का अभिलाषा होनी चाहिए। क्योंकि ये कहेंगे लोग कि आप स्वभाव से आत्मलाभ नहीं होता, तो क्या आप दर्शन पूजन नहीं करें, क्या आप व्रतादि नहीं करें, क्या आप संयम नहीं पालें, क्या आप ऐसा नहीं करें, ये सवाल है। असल में क्या करने का अभिप्राय है, सिर्फ शुभ बंद करके शुभ पुण्य ही कमाना है या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म की उपलब्धि करनी है, पहले तो ये बात है हमको क्या करना है। जिनवाणी पढ़ेंगे शुभ बंद जरूर होगा, लेकिन क्या यही हमारा अभिप्राय है कि हम पुण्य कमाते रहें। जैन दर्शन का योग हुआ इस भाव में हम जैनी हुए, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर भव भ्रमण से हमको छूटना है तो हमको कोई बहुत अच्छी तक मिली, तक कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, तक कहते हैं, अवसर मिला। अवसर भी बहुत छोटा है, तक में ये बात है, अवसर तो है लेकिन लंबे काल का नहीं है। बहुत छोटे काल को हमारे गुजराते हैं तक कहते हैं, एक चांस मिलता है थोड़ी देर के लिए उसको तक कहते हैं, मौका मौका कहते हैं कि मौका मिल गया है। अब इसमें जन्म मरण छूटने के लिए जो मौका मिला, इस मौके का उपयोग हम पुण्य कमाई करने में लग जाएंगे तो ये तो अन्य दर्शन वाले भी करते हैं, पुण्य तो हम अन्य दर्शन वाले करते हैं, इसके फल भी भोगते हुए देखने में आते हैं। क्या वहाँ पुण्य के फल भोगने वाले अन्य दर्शन में नहीं होते, जैनियों में ही होते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो मौका जिस मूल्यवान पदार्थ के लिए मिला है उसी को छोड़कर हम निकम्मे चीज को ग्रहण करने के लिए हमारा मौका को गंवा देंगे तो इसमें क्या बुद्धिमानी है? कि इसमें तो कोई बुद्धिमानी नहीं, ऐसा समझ करके अपना जो समय है इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, काल बहुत कम है। तो नहीं, ऐसा नहीं करता। चारों गतियों में त्रियंज को होता है, उसको देशना गति प्राप्त हो चुकी है अगले भाव में, या तो समोसरण में होता है, समोसरण में त्रियंज जाते हैं वहाँ देशना गति होती है, वहाँ अगले भाव में हो चुकी है। और किसी संस्कारी जीव को जिसको देशना गति हो गई है उसको जिनवाने से भी लाभ हो जाता है, वो हो जाता है, वो नींद पड़ जाती है, ऐसा तो है, वहाँ तक की मर्यादा है। लेकिन बिना दर्शनालब्धि वाले को ये ग्रंथ आदि सम्यक दर्शन में उपकारी नहीं होते, मजबूत नहीं होते। इसलिए एक श्रीमद् गीता में इसी विषय में थोड़ा आधार देता हूँ। सत्संग, सत्संग में सत का जिसको साक्षात्कार है, ऐसे पुरुषों का, पुरुषों के वचनों का परिचर्यन करना, मैंने इसके वचनों की में जो परमार्थ है उसकी गहराई में जाना, कि परिचर्यन करना है कि जिसमें से आगे जा करके सत की प्राप्ति हो। किसी भी प्रकार से जीव स्वयं की कल्पना करके सत को प्राप्त नहीं कर सकता। सजीवन मूर्ति प्राप्त होते ही सत प्राप्त होता है, इसको सजीवन मूर्ति कहा है। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे निर्ग्रंथ गुरु हो, चाहे सत्पुरुष हो, ये सजीवन मूर्ति है, ये ग्रंथ सजीवन मूर्ति नहीं है। ये तो सीधी बात है, ये टैप है वो कोई सजीवन मूर्ति नहीं है, ये वीडियो है कोई सजीवन मूर्ति नहीं है। सजीवन मूर्ति और इसमें बहुत अंतर है, ऐसा कहने का मतलब है सजीवन मूर्ति प्राप्त हुए ही सत प्राप्त होता है, सत समझने में आता है, सत का मार्ग मिलता है, सत पर लक्ष्य आता है। ऐसा सजीवन मूर्ति के विषय में लक्ष्य हुए बिना अगर कुछ भी जो करने में आता है वो जीव को बंधन का कारण है, यही हमारा हृदय है। कितना जोर से इस बात का प्रतिपादन किया है कि हमारे हृदय में कोई रहस्यभूत बात पड़ी है, हृदय है, इसका मतलब ये है कि हमारे हृदय में, हमारे अभिप्राय में कोई रहस्यभूत बात पड़ी है। तो ये है कि जीव को, मुमुक्षु जीव को ऐसा जानना चाहिए कि सजीवन मूर्ति मिलने पर सत समझ में आएगा, सत सत का मार्ग मिलेगा, सत पर लक्ष्य आएगा। इसके बिना अगर हम सीधा ही स्वच्छंद से कुछ करने को जाएंगे, कहाँ भूलेंगे, पता नहीं लगेगा और जीव को बंधन में आने का ही प्रवृत्ति हो जाएगी, यही हमारा कहने का अभिप्राय है। रहस्यभूत अभिप्राय है, मामूली बात नहीं है, इतना जोर दिया है इस पर। और इस बात को वास्तविकता से अगर सोचें तो जीव को भूलने का हजार ठिकाना है, मुमुक्षु जीव को भी मार्ग में आने से पहले, मार्ग प्राप्ति के पहले भूलने का हजार ठिकाना है। खुद कहाँ भूलेगा तो खुद को तो पता लगेगा। जिसको ऐसी परिस्थिति मालूम हो वो अपनी सेफ साइड के लिए अगर किसी जानकार को साथ में रखे तो इसमें कौन सी अनुचितता है, कौन सा अविवेक है, ये तो बड़ी समझदारी की बात है। कोई अनजान दवा तो खाते नहीं, खा लेते हैं। घर में से कोई टैबलेट मिल गई बिना पैकिंग के, पता नहीं कौन सी टैबलेट है, कब लाए हैं, किस लिए लाए हैं, पैसे तो जरूर दिए हैं। अब पैसे दिए इसलिए कोई खा लेते हैं क्या? डॉक्टर को दिखाएंगे ये कौन सी टैबलेट है, किस दर्द में इसका उपयोग हो सकता है, फिर खाएंगे। तो यहाँ प्रश्न होता है कि डॉक्टर को क्यों पूछना, अरे ये कोई बुद्धिमान का विषय है, तो बता ही नहीं है कि दवाई है, कौन सी दवाई है, किस दर्द पर लगाई जाती है, किस दर्द पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। मैंने जीव को संसार रोग में भी कितने प्रकार के विकार हैं, दोष के प्रकार भी कितने हैं कि असंख्य प्रकार हैं। तो हमारे दोष को सुधारने में हमें क्या करना चाहिए, जब जहां हम खड़े हैं वहां से कैसे आगे चले तो हम हमारा हित करें, इस बात को पूछने के विषय में तर्क वितर्क क्यों? ये तो सीधी साधी बात है कि जो इसके जानकार है उसको पूछेंगे तो हम सही मार्ग पर जल्दी आ जाएंगे, वरना भटकते रहेंगे, या कोई ऐसी दवा खा लेंगे तो मर भी जाएंगे, पॉइजनस भी होती है टैबलेट, तो ऐसे कोई खाते नहीं, सोच समझ कर ही खाते हैं। तो ये बात ऐसी, ये तो दवाई जैसी बात है।